Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners. But unlike usual Sundays, we won't take calls on mutual funds.
थोड़ी सी जानकारी अपडेट कर दूं मैं कि हम आज म्यूचुअल फंड से ही जुड़े सवाल लेंगे.
एब्सोल्युटली. एंड टू कॉल ऑन मार्केट मंत्रा एंड गिव योर क्वेरीज, द नंबर्स आर 2331-4444, 2342-1050 एंड 2331-0464. I'm Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
थैंक यू.
पहले हेडलाइंस के साथ वैभव.
यस, स्टार्टिंग विद द हेडलाइंस. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज इन्फ्यूज मोर देन 7,900 करोड़ रुपीज इन इंडियन इक्विटीज टिल 5th जुलाई, 1,16,000 करोड़ रुपीज दिस ईयर सो फार. Pre-budget consultations for Union Budget 2024-25 concludes on Friday. Budget set to present on 23rd of July, and India's electricity production went up by 15.06% to 167.55 billion units in May this year.
विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार में इस हफ्ते 7,900 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया. इस साल अब तक 1,16,000 करोड़ रुपए का निवेश. केंद्रीय बजट 2024-25 का बजट पूर्व परामर्श शुक्रवार को संपन्न हुआ. बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा और इस साल मई में भारत में बिजली उत्पादन 15.6% बढ़कर 167.55 अरब यूनिट तक पहुंचा. आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं. इस महीने विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों पर भरोसा जारी रखते हुए 5 जुलाई तक देश के शेयर बाजारों में 7,962 करोड़ रुपए का निवेश किया है. देश के सकारात्मक आर्थिक संकेतकों और बाजारों के बेहतर प्रदर्शन से विदेशी निवेशकों में उत्साह है. इससे पहले जून में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 26,565 करोड़ रुपए का निवेश किया था. ताजा आंकड़ों के अनुसार 2024 में विदेशी निवेशक अब तक भारतीय शेयरों में 1,16,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं. जुलाई के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारत के ऋण बाजारों में भी 6,304 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस साल ऋण क्षेत्र में अब तक उनका निवेश 74,928 करोड़ रुपए का है. इससे पहले मई में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए थे. अप्रैल में भी विदेशी निवेशकों ने 8,700 करोड़ रुपए निकाले थे. उससे पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो विदेशी निवेशकों ने मार्च में भारतीय पूंजी बाजार में 35,098 करोड़ रुपए और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जबकि जनवरी में उन्होंने 25,743 करोड़ रुपए निकाले थे. आइए पहले कॉलर के पास चलते हैं. मथुरा से तरुण हमारे साथ है. तरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
सर नमस्कार.
नमस्कार.
मैं कुछ एक इक्विटी प्लान जानना चाहता हूँ जो मैं ले सकूँ, मतलब मैं लेना चाहता हूँ, तो मुझे गाइड कीजिए कि मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के अलावा, क्योंकि वो मेरे पास है इसलिए.
देखिए तरुण, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जैसे अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने की और सोच रहे हैं तो यहां पे मैं आपको दो चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने अभी हाल फिलहाल में ही कुछ समय पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो देखिए अभी पिछले कुछ कोविड के बाद से लगभग साढ़े तीन सालों से हो क्या रहा है कि मार्केट लगातार ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसे में ना बहुत दफा कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हम ये भी पैसा और इन्वेस्ट कर देते और इससे बहुत अच्छा हमारे को रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यहां पे आपको एक ये सावधानी ये रखनी है कि आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आप केवल वही पैसे इन्वेस्ट करिएगा जो आपको कम से कम 5 साल के बाद चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका ये वही पैसा है जो आपको 5 साल के बाद इन्वेस्ट करना है, तो मिड और स्मॉल कैप अगर आपके बकेट में ऑलरेडी है तो मैं कहूंगा कि आप अपने फ्लेक्सी कैप एक फंड अपने बकेट में जोड़ सकते हैं। ये एक डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड होता है जो तकरीबन 70% के आसपास आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है और बाकी का मिड और स्मॉल कैप में करता है। और यहीं पे फंड मैनेजर को पूरी छूट होती है कि वो मार्केट के हिसाब से अगर मिड कैप का एक्सपोजर या स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ाना घटाना चाहे तो वो भी कर सकता है, बट आमतौर पे 70% लार्ज कैप रहता है। रही बात कि अगर आपके लिए कौन सा फंड सही रहेगा इस कैटेगरी में, तो आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं, नहीं तो आप अपना ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप हो गया, नहीं तो आप अपना कोटक का भी देख सकते हैं, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज के नाम से है, नहीं तो आप एक ये मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप भी चुन सकते हैं। ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है लेकिन तकरीबन वही होता है, लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्ट करता है। तो आप इन दो तीन में से कोई सा फंड चुन सकते हैं अपने लिए।
वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, योगेश स्वागत है आपका शो में, प्लीज अपना सवाल पूछिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में क्या कभी कोई ऐसा वाक्य सुनने में आया है कि म्यूचुअल फंड में फ्रॉड पॉसिबल हो, तो किस तरीके से एक रिटेल निवेशक को क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या फोलियो नंबर एक्सपोज करना किसी के सामने ये भी एक फ्रॉड का जरिया बन सकता है। नंबर दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि मेरे तीनों ही फंड जो है अंडर परफॉर्म करते हैं, मिराई का लार्ज मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, तीनों ही 5 साल सीमा को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है।
देखिए सबसे पहला जो आपका सवाल है मैं उसके लिए कहूंगा कि देखिए फोलियो नंबर एक तरीके से जैसे आपका बैंक में आप खाता खोलते हैं और आपका वो बैंक अकाउंट नंबर होता है, इसी तरीके से जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं किसी एक एएमसी के साथ, तो वो एएमसी के साथ जो आपको उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक अकाउंट खोलता है उसको यहां पे हम लोग मोटा मोटी फोलियो नंबर कह देते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर एक बैंक अकाउंट के केस में होता है कि अगर किसी के पास खाली और सिर्फ आपका अकाउंट नंबर है तो उससे खाली वो बहुत कुछ नहीं कर सकता, आगे और भी बहुत सारे कहीं सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, कहीं कुछ ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेगा तो ओटीपी होता है, आपके साइन की जरूरत होती है। बट वहीं जैसे हम लोग वहां पे देखते हैं कि बिना बात के हर किसी को एक आपका फोलियो नंबर या अकाउंट नंबर डिस्क्लोज नहीं करते हम बैंक का, वैसे ही बिना बात के हर किसी को अपना फोलियो नंबर भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। और रही बात फ्रॉड की, तो देखिए एज सच अभी तक कोई बड़ा केस नहीं हुआ है हमारी नॉलेज में कि किसी रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान उठाना पड़ा हो। देखिए छोटे मोटे ऐसे कुछ चीजें हुई है कि जैसे कभी फ्रंट रनिंग का सुनने में आ रहा है, क्वांट का हुआ है, उससे पहले भी कुछ एक दो बार फ्रंट रनिंग के लिए सुनने में आया था, फिर कुछ टाइम पहले एक फ्रैंकलिन के कुछ डेट फंड्स पे थोड़ी सा संकट आ गया था, बट ये सब चीजों को मैं फ्रॉड नहीं कहूंगा, ये रिस्क रिलेटेड होते हैं। और इधर म्यूचुअल फंड के केस में जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस बनी है, जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने इतना कड़ा इतना सही इंतजाम कर रखा है कि ऐसा कुछ भी होना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दफा रेगुलेशंस बनाए और वहीं पे बंद हो गया, दिन भर दिन जैसे जैसे जो जो चीजें होती जा रही है वो अपने रेगुलेशंस दिन भर दिन उनको तैयार करते जा रहे हैं और उनको बेहतर करते जा रहे हैं। और उसका अगला सवाल था, मेरे ख्याल से आपने पूछा था, आपने कुछ अपने एक दो फंड्स के बारे में बताए थे, एक आपने मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप कहा था कि उसका रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। तो देखिए अनडाउटेडली ऐसा है कि एकदम अगर हम थोड़ा रीसेंट समय का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये फंड बहुत अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बुरा कर रहा हो, ये ठीक ठाक फंड है। और बाकी भी जो आप फंड कह रहे थे उसमें मतलब एकदम ऐसे कोई चिंताजनक बात मेरे को नहीं लग रही। थोड़ा सा बीच बीच में देखिए ऐसा होता है, हर फंड के साथ होता है, एक फेज आता है कि हर एक फंड अच्छे और बुरे फेज दोनों से गुजरता है, तो हो सकता है इस वक्त इनका थोड़ा सा वाला फेज चल रहा है, बट अभी इनमें बने रहिए, ये सारे फंड अच्छे हैं।
वैसे आकार, जब ये बात करते हैं, हम जब कहते हैं कि साल में एक बार आप रिव्यू करें, और तो जैसे हम देखते हैं कि रेटिंग आती है हर जगह पे, अगर हम वैल्यू रिसर्च रेटिंग की बात करें जो सब जगह ऑथेंटिक मानते हैं हम, तो रेटिंग अगर आज मैंने 5 स्टार ले लिया है,
हाँ जी,
और वो सपोज अभी एक साल में वो 4 स्टार हो जाता है या अगले साल में 3 स्टार हो जाता है,
हाँ जी,
तो कब मुझे उस फंड से निकल जाना चाहिए?
देखिए, मैं कहूंगा कि आपको 4 स्टार पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, 3 स्टार पे भी। 3 स्टार का मतलब है कि अभी भी एक वो ठीक ठाक एवरेज फंड है और आपको जरूरत नहीं है।
लेकिन एक साल में अगर कोई 5 से 3 पर आ गया है तब शायद हमें,
मैं कहूंगा तब भी एकदम से नहीं, मैं कहूंगा कि तब आपको उसके खिलाफ, थोड़ा सा खिलाफ नहीं, उसके
सतर्क
रहना चाहिए। आप उसको मतलब देखते रहिए कि भाई हो क्या रहा है, एकदम से इतनी जल्दी अगर हो रहा है तो, अगर वो फिर एकदम से और गिर जाता है, 2 नंबर पे आ जाता है, तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ, फिर आप एकदम फटाफट देखिए, अच्छे से चीजें चेक,
रिडेम्पशन पे
तो मैं नहीं कहूंगा। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि क्या कारण रहा है, फिर कारण में भी बहुत चीजें आती है, क्या ऐसा हुआ है कि जो परफॉर्मेंस में गिरावट आए उसके साथ एक फंड मैनेजर भी चेंज हुआ था, अगर हुआ हो तो शायद आपके लिए इसका मतलब है कि वो फंड मैनेजर के साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, वो नहीं दे पा रहा है, तो आपको निकालने की जरूरत है।
जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से गौरव। गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
गौरव को और मार्केट कंपनी को
जी,
सर, मेरा सवाल है, ये जो दुनिया भर की जो छोटे छोटे देश हैं जिनके यहाँ बड़ी मार्केट नहीं है, उनका पैसा क्या अमेरिकन मार्केट में जाता है? क्यों अमेरिकन मार्केट इतनी बॉयंट है? क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू, जैसे हमारे यहाँ का थोड़ा बहुत पैसे जाता है, वैसे क्या बाकी यूरोपियन और बाकी छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे भी सब थोड़े बहुत अमीर लोग होंगे, इन्वेस्टिबल सरप्लस होगा, वो क्या अमेरिकन मार्केट में जाता है, इसीलिए अमेरिकन मार्केट बॉयंट है? और ऐसा कोई फंड बताइए जिसमें हम भी थोड़ा सा एक्सपोजर ले सके अमेरिका के मार्केट जो स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स जैसे टेस्ला आ गया, गूगल आ गया, इनमें तो हम लोग कैसे, किस फंड में डालें कि थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर वहां का भी रहे? और थोड़ा दूसरा सवाल है छोटा सा, सर, 55-57 साल की उम्र में क्या मेरे को अभी ऑलरेडी डेट फंड में कर देना चाहिए काफी, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में जाना चाहिए? क्या मेरे पास काफी इन्वेस्टमेंट पुराने हैं, 15-20 साल पुराने हैं, तो बढ़ चुके हैं, तो या चुपचाप बैठा रहूं कुछ ना करूं, क्योंकि 5-7 साल और है मेरे पास? थैंक यू।
देखिए, जो आपका सबसे पहला सवाल था यूएस को लेके, देखिए, एक अगर हम लोग कंट्रीज में बात करें तो यूएस एक काफी अच्छी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी है, और वहीं से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक भरोसा आता है अलग अलग देशों से, जिसको एक कहते हैं ना, हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां की इकोनॉमी पे भरोसा होता है, तो एक बहुत ही स्टेबल डेवलप्ड है, तो इस वजह से उनके पास काफी ज्यादा फ्लो भी रहता है। और रही बात आपकी कि वहां पे आपको कोई से एक ऐसा फंड चाहिए जो वहां की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सके, तो देखिए, सबसे बेहतरीन रहता है इस चीज के लिए नैसडैक 100 उनका एक इंडेक्स है, जो कि सारे आपके गूगल हो गया, अल्फाबेट उस कंपनी का नाम है जो गूगल को ओन करता है, और ऐसे सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बट अभी कुछ समय से हुआ क्या हुआ है कि भारत गवर्नमेंट ने ना एक लिमिट सेट करी हुई है कि जो बाहर के फंड्स में इन चीजों में पैसे लगाएगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उसकी एक लिमिट है, वो लिमिट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो उस पर चर्चा चल रही है कब बढ़ाएंगे, थोड़े दिनों में बढ़ाएंगे, बट अभी उस कारण आपके लिए ना ऐसे कुछ बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है जिसमें आप एक इजी रूट ले पाए। उसके जगह आपके लिए जो एक दूसरा ऑप्शन बनता है वो ये बनता है कि आप एक किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ एक डायरेक्ट अकाउंट खोले, आजकल बहुत आसानी से खुल जाता है, आपका ऐप से ही खुल जाता है, मोबाइल ऐप से ही खुल जाता है, और वहां पे जाके आप किसी भी एक नैसडैक 100 में अच्छा से एक ETF ले ले, वो पूरा नैसडैक 100 का जो यूनिवर्स, जो पूरा इंडेक्स है उसको रेप्लीकेट करता है। और बाकी देखिए, कुछ समय में अभी उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे इंडियन फंड्स है जो फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, नैसडैक 100 को रेप्लीकेट करते हैं, इनमें भी बहुत जल्दी ठीक से हमारी लिमिट्स खुल जाएगी, तो इनमें भी हम लोग कर पाएंगे। अभी भी किसी किसी में खुली हुई है, लेकिन बहुत छोटी मोटी खुली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बंद है, बट एक वो थोड़ा सा चैलेंज चल रहा है अभी। और इसके बाद आपका मेरे ख्याल एक तीसरा क्वेश्चन था कि 55-57 की उम्र में कि आपको पूरा डेट में आ जाना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं कहूंगा कि एक जो हमारा मोटा मोटा थंब रूल रहता है वो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी जब आप पूरा अच्छे से रिटायर हो जाए आपको अपना पूरा पैसा डेट में नहीं करना है, आपको मिनिमम 1/3 इक्विटी में रखना है। वरना होगा क्या कि जो आपके रिटायरमेंट के आगे के साल होंगे आज से 10-12 साल बाद आप एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को असेस करिए कि अभी आपके रिटायरमेंट कितना समय है, कितना भाग आपको ऑलरेडी इक्विटी में है, कितना डेट में है, और उस हिसाब से आप धीरे धीरे अपना डेट की तरफ उस प्रपोर्शन में आने के लिए अपना पैसा अकॉर्डिंगली मूव करिए।
एंड आकार, बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर, देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेरी दैट वी गेट फ्रॉम आवर लिसनर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स एज वेल। मान लीजिए कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं एंड द इन्वेस्टमेंट वेदर इट स्पैन्स अ ईयर ऑफ 5 or 10 or 25 or 30, हाउ एग्जैक्टली डू यू कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट?
See, so it is calculated through the NAV of the units that you have purchased. So once you invest in a mutual fund scheme, you are allotted some units. The NAV can be, you know, called somewhat a price of that particular unit. So let's say, you know, you purchase a unit at an NAV of 12 rupees and after 3 years, the, NAV of that particular unit has, you know, gone to say 15 rupees. So 15 minus 12, this 3 rupees is basically your profit or the gain that you have earned.
So whether it's 3 or 30, the methodology remains the same.
Yeah, so this is how you calculate the profit, your selling price minus the cost price. And these NAVs are calculated on a daily basis dependent on the portfolio of the fund you have invested in and the market value of the holdings of that portfolio.
We have our next caller, Jitendra Ji from Jaipur. Swagat hai aapka show mein. Apna sawal poochhiye.
Haan, sir, fund ka size bada ho jata hai to kya fark padta hai aur kitne fund ke size ko bada mante hain?
मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपका सवाल है कि अगर फंड का जो AUM है, साइज है, वो बहुत बढ़ जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये समस्या ज्यादातर आती है जो आपके स्मॉल कैप फंड होते हैं। होता क्या है कि जैसे आपका AUM बढ़ता है तो जो फंड मैनेजर है उसके लिए एक चुनौती आ जाती है कि वो उस AUM को उतने ही अच्छे से अच्छे स्टॉक आइडियाज ढूंढ के उनमें इन्वेस्ट करे। अब स्मॉल कैप्स में क्या होता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढना थोड़ा सा कंपैरेटिवली चैलेंजिंग होता है और वहीं पे उन स्टॉक्स की लिक्विडिटी पे भी कंसर्न होता है, क्योंकि जो एक स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनी का स्टॉक होता है वहां पे कई दफा होता है कि आपके लिक्विडिटी कंसर्न्स होते हैं कि आप जितने स्टॉक खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं वो मार्केट में उतनी इजिली अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम AUM की बात करें तो एक जो लार्ज कैप फंड होता है वहां पे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, तो वहां पे एज सच नहीं आता। तो ये ज्यादातर दिक्कत आती है स्मॉल कैप फंड में। आपने बीच बीच में देखा होगा, अक्सर न्यूज में आता है कि जैसे किसी एक फंड मैनेजर ने एक स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टमेंट पे SIP पे रोक लगा दी या कुछ समय के लिए बंद कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट गेट लगा दिया। वो इसी वजह से होता है। तो जब फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि उसके पास उसकी क्षमता से या क्षमता कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए कि इतना पैसा आ गया कि उसको लगता है कि वो एक इन्वेस्टर के हित में उसके भले के लिए उस हिसाब से इतने अच्छे से इन्वेस्ट करने में दिक्कत होगी इन कंसर्न्स के से, तो वो लोग अपने आप उस पर लिमिट लगा देते हैं और अपने आप पैसा लेना बंद कर देते हैं। तो वो इसके लिए ऑलरेडी सतर्क होते हैं। और बाकी लेकिन ये जो चीज है इसका हमारे पास रिटर्न्स पे कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसका कोई बहुत आज तक जिसको कहते हैं ना सॉलिड प्रूफ नहीं आया है, क्योंकि ऐसे बहुत स्मॉल कैप फंड्स हैं जो बहुत बड़े हो चुके हैं और तभी भी वो अच्छे से कर रहे हैं।
जी, अगले कॉलर हैं मुंबई से गिरधारी लाल। गिरधारी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
नमस्कार।
नमस्कार
सारी टीम को। नमस्कार जी।
नमस्कार। जी नमस्कार
जी, सवाल पूछें।
सर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है।
जी,
मेरा सवाल बैंक रिलेटेड है, लॉकर से है जी।
जी बताएं।
सर जी, मेरा ये सवाल है कि बैंक में लॉकर खोला गया है 88-89 में।
जी,
तो मेरा जो मैं एब्सेंट था, मैं फॉरेन में जाता था तो साल साल छुट्टी में आता था, तो मेरी वाइफ ने वो चाबी लेके ना अभी तक एब्सकॉन्डिंग है और लॉकर अभी तक बंद है।
मैं माफ करूंगा, मेरे को ये मेरे डोमेन का सवाल नहीं है, मैं इस पे आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहता हूं।
जी अगली खबर पे चलते हैं।
Absolutely. Moving on to our next news, the pre-budget consultations for Union Budget 2024-25, which started from the 19th of last month, concluded on Friday. The pre-budget consultation meetings was chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman. In the course of consultations, more than 120 invitees across 10 stakeholder groups, including experts and representatives from farmer associations, trade unions, education and health sector, MSME, trade and services, as well as infrastructure, energy and urban sector participated in the meetings. The Ministry of Finance, in a statement, said that Finance Minister Nirmala Sitharaman expressed gratitude to the participants for sharing valuable suggestions. She also assured experts and representatives that their suggestions would be carefully examined and considered while preparing the union budget. And we also have our next caller from Mumbai. We have Amit with us. Amit, welcome to the show. Please ask your question.
Yeah, thank you, sir. Sir, मेरा सवाल ये है पहला कि जैसे आपने अभी स्टार रेटिंग के बारे में बताया कि 5-4 या 3 स्टार्स ये जो रेटिंग है वो कौन देता है और कैसे पता करें कि कौन सी इस पॉइंट को रेटिंग है, ये कहाँ पता चलता है, नंबर वन। और दूसरी बात, आज हम इसी पे आज मैक्सिमम चर्चा कर रहे हैं कि फंड की सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि बीच में एक हमारे हाईकोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने भी इस पे चिंता जताई थी कि डे बाय डे फंड पे साइज इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो सर ये मैनेजेबल है, क्योंकि बीच में अभी रिपोर्ट आया है कि कम्पेयर टू एफडी म्यूचुअल फंड में पब्लिक अभी ज्यादा टर्नअप हो रही है, तो कितना ये मैनेजेबल होगा इन फ्यूचर में? थैंक यू।
देखिए, जो सबसे पहले आपका सवाल था फंड रेटिंग के लिए, तो उस पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, और यहां पे वेबसाइट पे आपको हर फंड के आगे आपको स्टार के शेप में रेटिंग मिलेगी 1 से लेकर 5 तक। 1 होता है कि अपनी कैटेगरी के अपने एक जैसे जो भी उस तरह के बाकी के फंड है उसमें उसका परफॉर्मेंस काफी कम है, अच्छा नहीं है, और 5 होते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रेटिंग्स है ये एक तरीके का आपके लिए शुरुआत होनी चाहिए ये चूज करने के लिए कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। आप सबसे पहले सही टाइप का फंड चूज करिए, अलग अलग तरीके के फंड से, और उस कैटेगरी को चुनने के बाद आप 5 और 4 स्टार रेटिंग को एज अ स्टार्टिंग प्वाइंट देख सकते हैं और उसके आगे उसमें चुनाव कर सकते हैं। अब आते हैं आपके एयूएम के साइज के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले तो कि जो आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट से ज्यादा रुपया आता जा रहा है, तो हम लोग जो एक एयूएम की बात कर रहे थे वो एक स्कीम लेवल पे कर रहे थे। बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, अगर आज की तारीख में हम लोग देखना चाहे तो ओपन एंड स्कीम्स लगभग 1600 या शायद उससे भी थोड़ी सी ज्यादा है, और वो जो एक एयूएम होता है वो स्कीम वाइज होता है, क्योंकि हर स्कीम का एक अलग फंड मैनेजर होता है, और वो भी जो वहां पे थोड़ा सा अगर किसी को कुछ चुनौती आती है तो वो स्मॉल कैप फंड्स में होते हैं, बट उस पर भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। तो आज की तारीख में मैं कहूंगा कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ भी यहां पे चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया अगर कभी किसी पर्टिकुलर स्कीम में अमाउंट या फ्लो ज्यादा हो जाते हैं, स्मॉल कैप में ज्यादा आ जाता है, और अगर फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो वो लोग कुछ समय के लिए अपने आप गेट्स लगा देते हैं और फिर बाद में सब सही होने पर वो अपने आप खोल देते हैं। तो अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निवेश करिए।
अगले कॉलर है दिल्ली से महेश। महेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
गुड इवनिंग। एक्चुअली आई एम नॉर्मली, मेरा म्यूचुअल फंड सारा जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सो हाउ डू आई एंश्योर एक्चुअली इफ आई एम सेलेक्टिंग ए टू फंड्स ऑफ सेम कैटेगरी, लाइक ओके आई विल से ईएलएसएस और मे बी मल्टी व्हाटएवर, so there is no overlap or the overlap between the two funds is less?
So I would say what you can do is you can just simply go to the fund compare tool on our website Value Research, and also you know go to the portfolio tab of the respective fund. You will get the allocation and the top holdings of all funds over there, so you can simply check like how much money or how much overlap is there for both the funds chosen by you.
जी अगले कॉलर भी वैभव देखें कौन है.
वी हैव तापस विद अस फ्रॉम कोलकाता. तापस वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
Actually, that I have HDFC balance advantage fund also, that is IDCW, the 15 lakh. Actually, that I take the dividend every month, and every month I am getting the dividend. And parallelly, what they said, that I will get the W systematic withdrawal plan also applicable here. Is it so?
See, first of all, what I would like to inform you is that the IDCW plan, which is a dividend plan, is not a very effective and an efficient way to get any sort of regular income. And, for that, it is always better that you opt for the growth plan. So, in this case, if you want to, move towards the systematic withdrawal plan, what you'll have to do is you will have to first make a switch from the IDCW plan to the growth plan. But having said that, be informed that any sort of, switch or redemption, even if you move from the IDCW to the growth plan, would attract all sorts of capital gains and exit load, if any, in the plan.
आकार हमारे साथ हमेशा नए नए श्रोता जुड़ते रहते हैं और हम समय समय पर लोगों को जानकारी देते रहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कि क्या करना चाहिए आपको खुद को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए. हर चाहे वह आपकी आमदनी चाहे जितनी भी हो, कम हो अधिक हो, जितना भी हो, अगर आप कुछ बचत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तब भी न्यूनतम जो सुरक्षा, हम वित्तीय सुरक्षा की बात करते हैं, तो आपको अपने लिए अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए.
देखिए, मैं कहूंगा कि इसके लिए तीन चीजों की जरूरत है. सबसे पहले तो कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले, जिसको हम कहते हैं, अपना इमरजेंसी फंड बनाइए. इमरजेंसी फंड बेसिकली आपके जो भी मंथली एक्सपेंडिचर है, चाहे वो आपकी ईएमआई है, चाहे घर के खर्चे, सबको टोटल करिए और मिनिमम 6 महीनों के बराबर उसका पैसा अपने पास बैंक एफडी में या लिक्विड फंड में या थोड़ा सा भाग एक अपने घर के सेफ लॉकर में रखिए. वो बहुत जरूरी है. और उसके बाद जो एक हमारे पास चीज होती है कि आपको एक एडिक्वेट टर्म प्लान यानी कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है. लाइफ इंश्योरेंस केवल वो लीजिए जो कि एक प्योर टर्म प्लान है और अगर आपके कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस है तो, वरना आपको उसकी आवश्यकता नहीं है. और एक अगर हम लोग थंब रूल की बात करें तो आपकी एनुअल इनकम के 10-12 टाइम्स ये होना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली में जो भी है सबके लिए बहुत जरूरी है. हम लोग कोविड का समय देख चुके हैं ऑलरेडी और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे को नहीं पता लग सकती कि एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी का या एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की क्या अहमियत है.
And moving over to another headline story, India's electricity production went up by a robust 15.06% to 167.55 billion units in May this year compared to 145.61 billion in the same month last year as demand surged amid the scorching heat wave, according to the monthly report of Central Electricity Authority. The demand for electricity peaked at a record high of 250 gigawatts on May the 30th as an extended heat wave across North India kept electricity demand elevated in May and most of June. The peak power demand is projected to go up to 260 gigawatt in 2024-25, with the monsoon gathering pace to cover the entire country ahead of schedule and temperatures coming down in the northern states. The peak demand is currently at around 200 gigawatt.
हाँ, बिजली का उत्पादन काफी बढ़ गया और बिजली की खपत भी काफी बढ़ गई है वैभव हमारे देश में भी गर्मी के दिनों में खासकर.
एब्सोल्युटली.
और जैसा आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे आकार अभी भी, तो वो अंदाजन कितना होना चाहिए.
देखिए, ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर और कितना किस टाइप के हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं. आमतौर पे मैं कहूंगा कि 10-20 लाख के आसपास होना काफी है.
जी,
15-20 लाख.
आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू.
And before we close, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors, FPIs, infused more than 7,900 crore rupees in Indian equities till 5th July, 1,16,000 crore this year so far. Free budget consultations for Union Budget 24-25 concludes on Friday, set to present on 23rd July, and India's electricity production went up by 15.06% to 167.55 billion units in May this year. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.